तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम,
ज्वालासी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम,
महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम,
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महा
पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन मेरा में बाबा की आस हो, बाबा की आस हो, श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंख नाद हो,
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
ओम शांति। जमीन पर रेंगने वाला एक प्राणी होता है जिसका नाम होता है सेंटीपीड, शतपाद। देखा है शतपाद, उसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। शतपाद ऐसे होता है जिसके 100 पैर होते हैं। सेंटीपीड 100 पैर, कनखजूरा। सुबह का समय था और सेंटीपीड शतपाद जा रहा था। एक लोमड़ी ने उसे देखा और सोचने लगी कि मेरे 4 पैर हैं, इसके 100 है, ये चलता कैसे होगा, कौन सा पैर कब डालना है, इसे कैसे समझता होगा कि अभी पहला पैर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सातवां, फिर आठवां, 100 पैर। लोमड़ी सोचने लगती है, चिंतन करती है आखिर ये हो कैसे रहा है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती होगी इसको, कितना सोचना पड़ता होगा इस सेंटीपीड को। और वो फिलोसोफर लोमड़ी गहन चिंतन के बाद उस चलते हुए सेंटीपीड को रोकती है और कहती है, रुको, मेरे मन में प्रश्न है, तुम कैसे चलते हो, तुम्हें कैसे पता कि कौन सा पैर कब रखना है, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मेरे चार है यहाँ तक ठीक है, तुम्हारे 100 है, कैसे तुम प्लान करते हो। वो सेंटीपीड, वो शतपात कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बचपन से चल रहा हूँ, पर तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुझे कि हो कैसे रहा है, कौन सा पैर कब रखना है। वो कहता है, अभी मैं इस पर चिंतन करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे पैर रखता हूँ। और फिर वो सेंटीपीड चिंतन करने लगा, मनन करने लगा कि मेरा कौन सा पैर कब जा रहा है, और जैसे ही वो चलने लगा धड़ाम से गिरा, बचपन से गिर रहा था, चल रहा था, तब कभी नहीं गिरा, पर आज जब वो सोचने लगा कि हो कैसे रहा है सारा कुछ, तब धड़ाधड़ गिरने लगा कई बार, बहुत परेशान हो गया, अब तक सब इतना अच्छे से चल रहा था, जब से ये विचार आया कि ये हो कैसे रहा है और मैं चल कैसे रहा हूं, और मेरे 100 पैर है, कौन सा पैर, 99वां पैर पहले रखूं या 100वां। और वो बहुत परेशान होता है, आखिरकार उस लोमड़ी के पास जाता है, लोमड़ी तुमने मुझे तो बता दिया, आखिर इसके बाद ये प्रश्न और किसी सेंटीपीड से मत पूछना, क्योंकि आज के बाद मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मन में घुस गया है एक प्रश्न कि मैं चल कैसे रहा हूं, अब ये प्रश्न मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, प्रश्न का कीड़ा अंदर घुस गया, संशय अंदर घुस गया, संदेह अंदर घुस गया कि मैं ये इतना सब जो कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, ये हो कैसे रहा है, ये किसकी शक्ति से हो रहा है, ये प्रश्न, इन प्रश्नों से वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। हम भी उस सेंटीपीड की तरह ही है, उस शतपात की तरह, सुबह से लेके रात तक इतना सब कुछ करते रहते हैं सब, और अगर ये प्रश्न पूछा जाए ये कैसे करते हो, तो धड़ाम से गिरोगे, ये हो कैसे रहा है, कौन करता है, कैसे करता है। अध्यात्म एक सूक्ष्म संतुलन है संकल्प और समर्पण का, एक तरफ संकल्प है जिसमें दृढ़ता है, जिसमें व्यक्तिगत इच्छा है, प्रयास है, प्रयत्न है, दूसरी तरफ समर्पण है, यह सूक्ष्म संतुलन ही हमें आगे बढ़ाता है, कहीं प्रयास की आवश्यकता है, कहीं समर्पण की आवश्यकता है, कहीं शुरुआत में समर्पण की आवश्यकता है, कहीं बाद में समर्पण की आवश्यकता है, कहीं शुरुआत में प्रयास चाहिए, बाद में समर्पण, कभी समर्पण कभी प्रयास, कभी समर्पण कभी संकल्प, संकल्प का मार्ग और प्रयास का मार्ग और समर्पण का मार्ग, दो मार्ग है, किसी एक ही मार्ग से हम नहीं चल सकते, केवल समर्पण के मार्ग से चलेंगे उसमें भी खतरा है, क्योंकि कहां कहां पर संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए, जिम्मेवारी भी और समर्पण भी, जिम्मेवारी एक तरफ और समर्पण एक तरफ, बोथ। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी 81 पूरा हुआ, 82 में प्रवेश, नया साल, जनवरी, जनवरी मास, 2 जनवरी, दिवाली तो नहीं है पर ऐसे लगता है मुरली जैसे दिवाली की मुरली चल रही। तो बाबा ने कहा, तुम हो चैतन्य दीपक, तुम यदि टिमटिमाते रहोगे, फ्लिकरिंग, जो लाइट टिमटिमाते रहता है, कितना डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ नहीं सकते उसमें, कुछ काम नहीं कर सकते, इरिटेट करता है, उसी तरह यदि तुम टिमटिमाते रहोगे तो संसार का क्या हाल होगा, वो भटक रहे हैं, वो अंधकार में है, वो प्रकाश को खोज रहे हैं। तुम यदि जगे हुए हो तो संसार में दिन है, तुम जब बुझ जाते हो तो संसार में रात है, तुम्हारे बिना इस संसार में वीरानी छा जाएगी। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम इस संसार के प्रकाश हो, क्योंकि ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं है, ऐसा प्रभु प्रेम किसी के भी पास नहीं है, प्रेम की रस्सी, स्नेह की रस्सी, स्नेह के जादूगर तुम हो, ऐसा जादू संसार में कहीं नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विजुअलाइजेशन, तुम्हारा प्रकाश विश्व के लिए क्या है, छत्र छाया, हमारा संगठित प्रकाश विश्व के लिए छत्र छाया है, हम ही उदास है, हम ही दुखी है, हम ही अलबेले है, तो संसार का क्या होगा, हम ही सोचते हैं आज उठू कि नहीं उठू अमृत वेला। कितना टेम्परेचर चल रहा है, कितना है, 5 डिग्री, 4 डिग्री, कितनी, 2, आज 2, हम ही कप रहे हैं तो संसार का क्या हाल होगा, हम हीटर है संसार के लिए, कौन हो तुम, स्वयं ही हीटर हो, मेरा शरीर ठंड के मौसम में मजबूत और स्वस्थ रहता है, सभी बोलेंगे, मैं ठंडी हवा में भी गर्माहट और ऊर्जा महसूस करता हूँ। मेरा शरीर खुद को हर मौसम के लिए अनुकूल बना लेता है। मैं ठंड में भी आराम और सुकून से रहता हूँ। मेरी त्वचा और मेरा शरीर ठंड से सुरक्षित और संरक्षित है। मैं ठंड के मौसम को सकारात्मकता और शक्ति से स्वीकार करता हूँ। मेरा मन और शरीर ठंडी परिस्थितियों में भी संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। यह ठंडी के समान। अंतर्मन उसे स्वीकार कर ले। अंतर्मन यदि कपता रहे ठंडी 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 ठंडी, मुझे कुछ नहीं होगा। आइसमैन, आइसमैन का वीडियो देखा है ना, देख लेना एक बार। विन हॉफ ब्रीदिंग भी है एक, जिसने वो विन हॉफ ने खुद ही तैयार की है। विन हॉफ नाम का एक व्यक्ति है जिसे आइसमैन कहा जाता है, और उसने कितने सारे प्रयोग किए, कितने सारे प्रदर्शन किए। बर्फ का ऐसा एक, उसके अंदर बर्फ ही बर्फ, उसमें कितना घंटा रहता है आइस बात। और उसने इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से जोड़ दिया, प्रकृति जीत बनने, और वो ट्रेनिंग देता है लोगों को। विन हॉफ ब्रीदिंग है एक, उसने खुद ही ईजाद की है। क्योंकि मौसम हमारे पुरुषार्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे मन को कमजोर करता है मौसम, कि आज तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वैसे ठंडी नहीं लगती है। जब देखते हैं अच्छा 2 डिग्री, तब ठंडी लगना ज्यादा चालू होती है। खुद को प्रोटेक्ट तो करना है, परंतु मन कमजोर ना पड़े, मन में कोई कमजोरी ना आए। वीर तुम अड़े रहो तो तुम हो चैतन्य दीपक, स्वस्वरूप सेवा स्वरूप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ताज तुमने पहन रखा है। कितने सारे प्रश्न पूछे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, ये सेवा के जिम्मेवारी का ताज सदा पहनते हो, कभी पहनते कभी निकाल तो नहीं देते हो। ये तो नहीं सोचते हो केवल बड़ों के लिए है। सतयुग, लक्ष्मी नारायण और रूटीन वाले सारे प्रश्न है उसमें, क्या बनना है, राजा प्रजा ये हमेशा आते रहते, तो करना क्या है। सबसे पहला काम आज की मुरली से रिस्पॉन्सिबिलिटी विजुअलाइजेशन। मेरा प्रकाश संसार के लिए आधार है, छत्र छाया है, कैनपी है, उसका चित्र बनाना है। क्या चित्र बनाओगे, क्या चित्र बनता है मन के आंखों के सामने, क्या आता है, एक चित्र है। मैं और सारा विश्व मेरे प्रकाश, मेरा प्रकाश विश्व के लिए छत्र छाया है। तो टिमटिमाता दीपक नहीं, सदा जलती जागती ज्योत, अमर ज्योत, उसके लिए क्या चाहिए, निरंतरता। मौसम जो हो जैसा हो, परिस्थितियां जो हो जैसी हो, अपना जो रूटीन है, अपनी जो आध्यात्मिक दिनचर्या है, अलौकिक दिनचर्या है, उसे तोड़ना नहीं है। कुछ भी होने दो, एक दिनचर्या सेट करके रखनी है और फिर उसको अपग्रेड करते जाना है। फ्लेक्सिबल भी रहना है, पर वहीं नहीं बैठ जाना है, उसको थोड़ा अपग्रेड करते जाना है। ऐप जो होते हैं ना, अपग्रेड अगर नहीं करो तो चलते नहीं है फिर, वैसा ये भी है। ये पहला काम है, सेल्फ चेक ऑन अलबेलापन। कौन सा ऐसा समय है जब मैं अलबेला हो जाता हूँ, दिनचर्या का वो कौन सा समय है। हो सकता है वो सुबह है, सुबह कम रहता है, हो सकता है दोपहर को है या शाम को है, या सोते समय है। सोते समय सबसे ज्यादा अलबेलापन आता है, या उठते उठते अलबेलापन आता है। उठे 2 बजे, अभी तो टाइम है, फिर 2:30, फिर देखा 3, अभी भी टाइम है, फिर 3:30, और उसके बाद देखा तो 5 ही दिखा सीधा, और फिर मैसेज सॉरी आई मिस द क्लास। मेंटल जिम्नास्टिक्स है, तो आज हम मुरली जिम्नास्टिक्स देखेंगे। एक तो ये काम, दूसरा सेल्फ चेक, कौन सा अलबेलापन। टाइम ढूंढना है, ये टाइम, ये 10 मिनट के लिए आता है, ये 5 मिनट के लिए आता है, खाने के बाद आता है या भोजन देखकर आता है, कुछ तो है, कहीं तो आता है। अचानक टेम्पटेशन, सामने कोई चीज आ गई, टूट पड़े और तुरंत खा लिया, और उसके बाद नहीं खाना था, भूल ही गया, बाबा सॉरी, सुबह ही संकल्प किया था आज ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और जब सामने चीज आ गई तब भूल गए, संयम खो गया। संडे की मुरली में था ना, इमर्ज रखो, रिवाइज करते रहो, बोलते रहो उसके बारे में। ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। ये दूसरा काम। तीसरा, क्राउन बनाना है एक अच्छा वाला। हमारे पास थे ना क्राउन, यहाँ है, चल बसे, टोपियां थी शायद। तो क्राउन, और क्राउन को क्या करना है, गिरने नहीं देना। और क्राउन कैसा हो, टाइट हो, ढीला ना हो, लूज ना हो, दृढ़ संकल्प से उसे टाइट करो, याद दिलाते रहो खुद को कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। हम अवतार है, मसीहा है, उद्धारक है, तारनहार है। जो जो टाइटल संसार ने भगवान के लिए दिए, भगवान ने वो सारे टाइटल्स हमें दिए। अव्यक्त महावाक्य है, बाप के टाइटल सो बच्चों के समान। अव्यक्त मुरली के महावाक्य है, बाप के टाइटल सो बच्चों के समान। हम जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल। और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई व्यक्ति काम भी नहीं करता है ठीक से, ये भी देखा गया है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग कई बार सेवा में आते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स या जो भी, 5 दिन 15 दिन। एक होता है सेवा में आना और फिर चले जाना, पर जब ज्वाइन करते हैं तब एक अलग ही चीज होती है। ये दोनों में बहुत अंतर है। सेवा में आते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी करते हैं चले जाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम उनके है कि जो वहां परमानेंट काम कर रहे हैं। पर जब ज्वाइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, साइन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलता है, तब एक अलग ही होती है, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। तुमने नहीं किया, गया वो काम। डांट भी पड़ेगी, डर भी रहता है रिस्पॉन्स, और डर रहना चाहिए। अर्जुन का युद्ध है कर्ण के साथ, पहली रात अर्जुन भयभीत है। भीम पूछता है आप भयभीत क्यों हो आज, वो कहता है कल मेरा कर्ण के साथ युद्ध है। कर्ण के साथ युद्ध है, इसी की तो तुम्हें कब से प्रतीक्षा थी, और तुम्हें भय कैसा, इसके पहले भी तुमने कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर में हरा दिया था, इसके पहले भी तुमने विराट के युद्ध में और अकेले सबको हरा दिया था, अब क्यों डर लग रहा है। अब निर्णायक युद्ध है, और जब ऐसा निर्णायक युद्ध होता है तो थोड़ा भय जरूरी है। वो भय हमें जागृत रखता है, अवेक रखता है, अलर्ट रखता है, रिस्पॉन्सिबल रखता है। क्राउन, कौन सा क्राउन है ये, रिस्पॉन्सिबल, अदृश्य क्राउन पहन के रखना है। जैसे योद्धे होते हैं, सोते हैं तो भी उनकी टेस्ट कैसे ली जाती है, ऐसी ली भी जाती है। एक वीडियो भी है ऐसा, एक सिपाही सो रहा है, उसका सीनियर आता है आधी रात को और उसकी तलवार लेने की कोशिश करता है, देखता है कितना अलर्टनेस है इसमें। वो जैसे लेता है एकदम वो उठ जाता है, पास पास हो गया। आहट, शत्रु बहुत शातिर है, दबे पाव से आता है, तो ये क्राउन पहन के रहना है। और दूसरा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व, जो संकल्प है उसको दृढ़ करने के लिए कुछ संकल्प है यहाँ पर। मैं सदा अडीग और प्रकाशमान हूँ, मैं सदा अडीग और प्रकाशमान हूँ, जिम्मेवारी का ताज मेरा गौरव है, मैं संसार के लिए आशा की किरण हूँ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, दृढ़ संकल्प मेरी ऊर्जा है, चुनौतियां मुझे नहीं डिगा सकती, मैं सदा परिवर्तन का चैतन्य दीपक हूं। इन संकल्पों में क्या है, ऊर्जा है, शक्ति है। ऐसे शक्तिशाली संकल्प हमारे पास होने चाहिए, ना केवल होने चाहिए, उन्हें पढ़ो, उनको याद करो, उनको लिख के रखो अलग अलग जगह पर, ऑफिस में जिसमें करंट लग जाए। मैं परिवर्तन का दीपक हूं, दृढ़ संकल्प मेरी ऊर्जा है, शक्ति है। नहीं तो डल हो जाता है व्यक्ति, उदासी में डूब जाता है। कब उदासी आ जाती है पता ही नहीं चलता है। क्या है, रोज रोज मुरलियां पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, वही 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 वही, बाप समान बनो, दिव्य गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, तुम विश्व के लिए आधार हो, निमित्त बनो, निर्माण बनो, महावीर हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, स्वराज्य अधिकारी हो, सारे शब्द वही 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 सुने, वही वही वही, कुछ भी उसमें उबाऊ और लंबी देखो तो उसमें से सारी खो जाता है। पकड़ना क्या है, करना क्या है, जीवन एक तरफ, मुरली एक तरफ, कर तो रहे हैं, परंतु ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ रहा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में विजिबल नहीं हो रहा है। समस्या तो जो कहते हो है, मुरली जब पढ़ते थे तो भी वही है, मुरली जब नहीं पढ़ते तब भी वही है, तो एक उदासी सी छा जाती। इसलिए अप्रोच बदलना है, चेंज करना है, नवीनता। कभी गीत बनाओ, कभी कविता, कभी वर्कशॉप, कभी ड्राइंग, कभी चित्र, कभी पोस्टर, कभी डिबेट, कभी डिस्कशन, कभी डायग्राम, स्केच, ट्री, फ्लो चार्ट, शेप चार्ट, कभी निमोनिक, कभी मुरली को पढ़ने का एक और न्यू टेक्निक। पॉलिटिक्स की दृष्टि से ये मुरली में क्या क्या है, फर्स्ट। मेडिकल की दृष्टि से इस मुरली में क्या क्या है, दो, थ्री। चाणक्य यदि इस मुरली को पढ़े तो उसका दृष्टिकोण क्या है, इस मुरली के प्रति। आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से यह मुरली क्या है? कोई स्वार्थी पढ़े, कोई अज्ञानी पढ़े तो, कोई जिम्नास्टिक्स पढ़े तो यह मुरली क्या है? कोई नर्स पढ़े, कोई डॉक्टर पढ़े, कोई फ्रूटेरियन पढ़े, कोई लिक्विडेरियन पढ़े, कोई ब्रदेरियन पढ़े तो यह मुरली क्या है? भोजन और यह मुरली का क्या कनेक्शन है? भोजन से संबंधित क्या क्या? काम विकार और यह मुरली, इन दोनों का काम विकार की दृष्टि से, यह ब्रह्मचर्य की दृष्टि से यह मुरली में क्या क्या पॉइंट्स है? पॉलिटिक्स से दृष्टि में क्या क्या पॉइंट्स है? फाइनेंस की दृष्टि से, अकाउंट्स की दृष्टि से इस मुरली में क्या क्या पॉइंट्स है? अकाउंट्स वाली कौन कौन सी पॉइंट है? डाकू की दृष्टि से कौन कौन सी पॉइंट है? टेररिस्ट की दृष्टि से यह मुरली में क्या क्या पॉइंट्स है? सो मुरली में सोशल दृष्टि, समाज के दृष्टिकोण से, समाज सुधार की दृष्टि से इस मुरली में क्या क्या बातें ऐसी मिलती है जो समाज की दृष्टि से, समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या है? समाज सुधारक की, सुधार की दृष्टि से इस मुरली से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? साधु संतों की दृष्टि से क्या है? किसान की दृष्टि से क्या है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद यदि इस मुरली को पढ़े तो वो क्या सोचेंगे कि जैसे किसान होता है वो निरंतर जागृत रहता है अपने किसान, अपने खेती की देखभाल कैसा है, वैसे ही तुम चैतन्य दीपक हो, तुम्हें जिम्मेवारी लेनी है। मुंशी प्रेमचंद की जो हिंदी है उस हिंदी के शब्द इस हिंदी में जोड़ो। एक साइंटिस्ट यदि इस मुरली को पढ़ो तो साइंस की कौन सी बात है इस मुरली में? ये है मुरली को पढ़ने का दृष्टिकोण। अलग अलग दृष्टिकोण से उसे पढ़ो। एक धोबी अगर पढ़े तो क्या? एक पत्रकार यदि पढ़े तो क्या? एक क्रिटिक यदि पढ़े, 20 क्रिटिसिज्म शब्द मुरली, इस मुरली के क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकते, निकालो क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। एक अज्ञानी पढ़े तो क्या है? एक नास्तिक आदि पढ़े तो क्या? एक अनपढ़ सुने तो क्या? एक पियक्कड़ यदि पढ़े तो क्या? एक बिजनेसमैन यदि पढ़े तो क्या? एक इंजीनियर यदि पढ़े तो क्या? एक लॉयर यदि इसको पढ़े तो क्या? ऐसे जब तक एक कुक, तो अलग अलग तरीके से उसको देखना है। पहले ही इंटेंशन सेट करना है कि इस मुरली को मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ूंगा कि मेडिकल में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, एडिक्शन की दृष्टि से इसको, डी एडिक्शन की कौन सी टिप्स है, काम विकार मुझे जीतना है उसके संबंधित क्या क्या पॉइंट्स है। ये है विधि। आज एक नई विधि हम लेंगे इसी मुरली के लिए, जिम्नास्टिक्स वाली। तो जो एक जिम्नास्टिक्स होता है, एक जिम्नास्ट होता है ना, उसको ये 10 बातें बहुत आवश्यक है जो इस मुरली में दी गई है। तो दिस इज मुरली जिम्नास्टिक। सबसे पहली है एडेप्टिबिलिटी। बाबा ने कहा सोल कॉन्शियसनेस ऑन वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक जिम्नास्ट होता है वो बीम पर, बार पर, ट्रैम्पोलिन पर उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अडेप्ट करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस में वो जिम्नास्टिक करता है। कभी बहुत ठंड है, कभी बहुत गर्मी है, कभी सिचुएशन ठीक नहीं है, भूमि समतल नहीं है, तब एडेप्टिबिलिटी। ए बी फॉर बैलेंस, उसे बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ पर भी अध्यात्म पूरा बैलेंस ही है, एक तरफ जिम्मेवारी, एक तरफ आत्माभिमान। बाबा ने कहा स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप, पुरुषार्थ और सेवा। तीसरा कंसिस्टेंसी। यहाँ पर अगर दिनचर्या में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर जिम्नास्ट कहता है कि मैं 10 दिन आराम करता हूँ तो रह गया गोल्ड मेडल बाहर बाजू में, उसको तो हर दिन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस हर दिन। यहाँ पर भी वैसा ही है डिटर्मिनेशन, क्योंकि उसमें कई बार गिरना होता है, फिर से जब जब गिरो फिर से उठो। एंड्यूरेंस, स्पिरिचुअल एंड्यूरेंस, वहाँ फिजिकल एंड्यूरेंस, सहन करना पड़ता है, बिना सहन किए शरीर शक्तिशाली नहीं बनता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं, जब दूसरे सोते हैं तब वो मेहनत करते हैं, जब दूसरे थक कर गिर पड़ते हैं तब वो वहां से चालू करते हैं। एंड्यूरेंस, सहनशीलता, स्पिरिचुअल स्टेमिना को बढ़ाना है यहाँ। उसके बाद में फोकस, बिना फोकस के जिम्नास्टिक्स हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, याद की यात्रा भी ऐसी ही है। गोल विजुअलाइजेशन, अपना गोल देखते रहना है, मुझे क्या बनना है, संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता, देवता, ज्ञान के दर्पण में देखो, ये सब अच्छा नहीं लगता, इन सबको हटाओ, केवल अपना एक वर्षन देखो, मेरा अपडेटेड वर्षन, जिसमें वो चीज नहीं है जो अभी मुझे दुखी करती है, तंग करती है। अगला हारमनी, सामंजस्य चाहिए, हर चीज हारमनी लाता है वो जीवन में। इम्प्रूवमेंट, गिरो फिर सीखो, गिरो फिर सीखो, सुधार, जॉय ऑफ विक्ट्री, देखो अपने आप को, वो मेडल मुझे मिल रहा है, वो ट्रॉफी मुझे मिल रही है। वो ट्रॉफी का महत्व नहीं है, वो विजुअलाइजेशन का महत्व है। तो ये मुरली जिम्नास्टिक्स है, मुरली में ये सारी चीजें आध्यात्मिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। एडेप्टेबिलिटी, परिस्थितियों में अडेप्ट कर देना, अरे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बस दिन रात इसी की चर्चा, वेदर पर कोई डिस्कशन नहीं करना, स्टेप नंबर वन, और जाकर उसको देखना नहीं आज का टेम्परेचर इतना है या उतना है। संकल्प कर लो जब दो से नीचे जाएगा ना तब देखेंगे क्या करना है, या जीरो तक पहुंचेगा ना तब सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं करना है, डरना ही नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। यह डर ज्यादा लोगों को मारता है, ठंडी कम लोगों को मारती है। वो उदाहरण है ना, वो ट्रेन का, उसमें वो एक केबिन होता है एकदम कोल्ड वाला, तो एक व्यक्ति उसमें लॉक हो जाता है और रात भर वहीं रहता है, और सुबह खोलते हैं तो वो मर चुका है, परंतु बाद में पता चलता है उस दिन तो लाइट गई हुई थी, टेम्परेचर नॉर्मल ही था, जबकि वहां -40 डिग्री टेम्परेचर उसमें लिखा हुआ था, पर लाइट गई ही थी तो टेम्परेचर नॉर्मल था, फिर भी मर गया। उसके डर ने उसे मार दिया, तो ठंडी का भी डर मार देता है, इसीलिए निर्भय। तो एडेप्टेबिलिटी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, स्पिरिचुअल फोकस, स्पिरिचुअल गोल विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल हार्मनी, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअल जॉय ऑफ विक्ट्री। तो ये आज की मुरली। तो क्या क्या करना है आज के काम? सबसे पहला काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का विजुअलाइजेशन करना है। दूसरा, अलबेलापन कहाँ आता है, कब आता है, उसको कैसे ठीक करे, वो एक क्राउन बनाना है। और ये जो संकल्प दिए, ये ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे, इनका इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे संकल्प, मैं सदा अडिग हूँ, प्रकाशमान हूँ, जिम्मेवारी का ताज मेरा गौरव है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे इसी मुरली पर। मुरली है चैतन्य दीपक की, रोशनी फैला रही है, मुरली है ताज पर, स्नेह की रस्सी, स्नेह के जादूगर, ये सारे शब्द मुरली में आया है। ओम शांति।
तो सब स्थिर होकर बैठेंगे और एक बार आंखें खोल देंगे पहले, और देखेंगे जो शरीर है, जो मिट्टी है, ये तुम सब जानते हैं। तो दीपक कैसे होता है, नीचे मिट्टी होती है और बीच में खाली होता है, उस खाली दीप में क्या होता है, तेल। तो ये हमारा जो मस्तक है ये तेल से भरा हुआ है, और फिर ज्योति कहाँ जलती है, ऊपर, जैसे टोपी खड़ी है ना ऊपर, ऐसे ज्योति जलती है, तो वो ज्योति जल रही है। तो ऐसे किसी का भी आज टोपी का देखे तो यही सोचना है कि टोपी जल रही है। अब आशीष भाई देख रहे हैं उसकी टोपी में है ही नहीं। तो हम जो भी देखते हैं तो उसको ज्ञान से अटैच करना, ये तेल से भरा हुआ होगा तभी ज्योति जलती रहेगी। तो सारा दिन ज्ञान का घृत, ज्ञान का उसमें तेल डालते रहना है। तो अभी हम 5 मिनट की कमेंट्री करेंगे इसी मुरली के ऊपर, सभी स्थिर होकर बैठेंगे। मैं मस्तक सिंहासन पर विद्यमान जगमगाता हुआ चैतन्य दीपक हूं, मुझ दीपक की तार ज्ञान सूर्य जागती ज्योत से निरंतर जुड़ी हुई है। उस ज्ञान सूर्य जागती ज्योत का प्रकाश निरंतर मुझ चैतन्य दीपक को प्रकाशवान कर रहा है। मुझ चैतन्य दीपक से असंख्य रंग बिरंगी किरणें संसार में रोशनी बिखेर रही है। संसार की भटकती हुई आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की तरफ आकर्षित कर रही है। मुझ दीपक से निरंतर प्रवाहित हो रही परमात्म शक्तियों की किरणें सारे संसार पर प्रकाश की शतरछाया के रूप में निर्मित हो रही है। विजुलाइज करेंगे चैतन्य दीपक से जो किरणें निकल रही है, इसे सारे संसार में शतरछाया बन चुकी है। शक्तिशाली प्रकाश की शतरछाया, परमात्म शक्तियों की शतरछाया, ज्ञान सूर्य जागती ज्योत और मुझ चैतन्य दीपक के प्रकाश की शक्तिशाली शतरछाया के नीचे संसार की सभी आत्माएं एकत्रित हो चुकी हैं। सब आत्माएं अज्ञान के अंधकार, विकारों के अंधकार, अनेक प्रकार के अंधकार से मुक्त होकर परमात्म प्रकाश से भर रही है, परमात्म शक्तियों का प्रकाश। सर्वात्मा को आलोकित कर रहा है। मैं चैतन्य दीपक हूं, मुझ पर स्वयं ज्ञान सूर्य जागती ज्योत ने विशेष जिम्मेवारी दी है। मैं सारा दिन इस जिम्मेवारी के ताज को पहन कर रखूंगा और निरंतर परमात्म शक्तियों का प्रकाश फैलाता रहूंगा। ओम शांति।
हाँ, ओम शांति। हॉस्पिटल में रोज 3 दिन के लिए एक्सरसाइज रहती है, 6:30 से 7:30, 6:30। हाँ, जिनको आना है आ सकते हैं। ऊपर लाइट हाउस में 1st फ्लोर जो डायबिटिक कैंप चालू है उसमें 6:30 से, अभी 6:30 से 7:15।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे,
सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी। तपस्वी
शिव शक्ति योगेश्वरी
तुम शिव शक्ति प्रचंड महाशक्ति
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति
ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी
ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याण
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति
हे आत्मा
प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति शिव शक्ति योगेश्वरी
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार
शिव शक्ति